अध्याय 24 प्रार्थना की सभा। प्रार्थना की सभाएं सबसे मनोहर और रुचिकर बनाई जाएं, परंतु प्रायः इनका प्रबंध असंतोषजनक किया जाता है। बहुत से लोग उपदेश की सभा में तो उपस्थित होते हैं, परंतु प्रार्थना की सभा की उपेक्षा करते हैं। यहां पर विचार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से बुद्धि की खोज करके सभा का संचालन करने के हेतु योजना बनानी चाहिए, ताकि वह रुचिकर और आकर्षक हो। लोग तो जीवन की रोटी के लिए तड़पते हैं। यदि उन्हें ये प्रार्थना की सभा में मिल जाए तो वे वहीं जाकर उसे लेंगे। लंबे नीरस व्याख्यान तथा प्रार्थना कहीं भी अनुचित है, विशेषकर साक्षी सभा में। जो बोलने के लिए अग्रसर और साहसी हैं, उन्हीं को सर्वप्रथम मौका मिलता है, और वे साहसहीनों और एकांत सेवियों को साक्षी का भी अवसर ले लेते हैं। जो लोग बेकार हैं, वही साधारणतः अधिक बोलना चाहते हैं। उनकी प्रार्थनाएं लंबी और यांत्रिक होती हैं। वे स्वर्गदूतों को और लोगों को थका डालते हैं। हमारी प्रार्थनाएं छोटी और संक्षिप्त और निर्दिष्ट होनी चाहिए। यदि किसी को लंबी थकाने वाली प्रार्थनाएं करनी हैं, तो गुप्त कोठरी के लिए रख छोड़नी चाहिए। परमेश्वर के आत्मा को अपने हृदय में आने दीजिए, और वो सारे नीरस आडंबर को उड़ा ले जाएगा। सार्वजनिक में की प्रार्थना लंबी नहीं होनी चाहिए। मसीह ने अपने शिष्यों को इस विचार से प्रभावित किया कि उनकी प्रार्थनाएं संक्षिप्त, केवल उनकी आवश्यकताओं ही का वर्णन करने वाली होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। वो उनकी प्रार्थनाओं का विस्तार और उनकी सामग्री बतलाता है, जिसमें वे शारीरिक व आत्मिक आशीषों के लिए अपनी इच्छाओं को और धन्यवाद को प्रकट कर सकते हैं। उसमें सबकी वास्तविक जरूरतें दर्शाई गई हैं। किसी सामान्य प्रार्थना के लिए एक या दो मिनट काफी हैं। ऐसे भी मौके होते हैं जबकि परमेश्वर की आत्मा विशेष रीति से प्रेरित करती है और आत्मा की विनती आत्मा में की जाती है। उत्कंठित मानव हृदय अति पीड़ित होकर परमेश्वर के लिए कहता है। आत्मा याकूब की भांति मल्ल युद्ध करती है और तब तक विश्राम न लेगी जब तक परमेश्वर की शक्ति विशेष रूप से प्रकट न हो जाए। परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, परंतु अनेक लोग नीरस तथा उपदेश सुनाने वाली प्रार्थना करते हैं। वे मनुष्यों से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से नहीं। यदि वे परमेश्वर से प्रार्थना करते और वास्तव में समझ जाते कि वे कर क्या रहे हैं, तो वे अपनी ढिठाई पर चौंक उठते, क्योंकि वे परमेश्वर को प्रार्थना के रूप में एक उपदेश सुनाते हैं। मानो कि परमेश्वर को आप प्रश्नों के प्रसंग में जो संसार में हो रहे हैं विशेष सूचना की आवश्यकता है। इस प्रकार की सारी प्रार्थनाएं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ बन जाती हैं। उनका स्वर्ग में कोई हिसाब नहीं रखा जाता। उनसे परमेश्वर के दूत भी थक जाते और मानव भी, जिन्हें ऐसी प्रार्थनाओं को सुनना पड़ता है। यीशु बहुधा प्रार्थना में पाया जाता था। वह या तो एकांत बाग में या पहाड़ों पर चला जाता था कि अपनी प्रार्थनाओं को अपने पिता के सामने रखे। जब दिन का कारोबार और चिंता समाप्त हो जाती थी और थके मांदे विश्राम करना चाहते थे, उस समय को यीशु प्रार्थना में व्यतीत करता था। हमें प्रार्थना की भावना को निरुत्साह नहीं करना है, क्योंकि प्रार्थना करना और जागते रहना बहुत थोड़ा होता है, और आत्मा के और समझ के साथ प्रार्थना भी कम की जाती है। उत्सुक और प्रभावशाली प्रार्थना सर्वदा उचित है और उससे कोई थक नहीं जाता। ऐसी प्रार्थना से उन सबको रुचि होती और जो ठंडा होता है जिनको भक्ति से स्नेह है। गुप्त प्रार्थना की अवहेलना की जाती है। यही कारण है कि बहुत से परमेश्वर की उपासना में ऐसी लंबी थकान वाली भटकी हुई प्रार्थना करते हैं। वे प्रार्थना करते समय अपने पिछले सप्ताह के उपेक्षित कर्तव्यों को दोहराते और चक्कर काटते रहते, इस आशा में कि उपेक्षित कार्यों की कमी पूरी हो जाएगी और उनका दूषित अंतःकरण शांत हो जाएगा जो उन्हें सताता है। वे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की दया के पात्र बन जाए, परंतु अक्सर इन प्रार्थनाओं का नतीजा यह होता है कि दूसरे लोग भी इन्हीं के धरातल पर आत्मिक अंधकार में लाए जाते हैं। यदि मसीही मसीह के उपदेशों को प्रार्थना करने और जागते रहने के बारे में अपनावे, तो वे परमेश्वर की उपासना में अधिक समझदार होंगे। प्रार्थना में अधिक धन्यवाद। हर एक प्राणी जिसमें सांस है परमेश्वर की बड़ाई करे। क्या हम में से किसी ने सोचा है कि हमें परमेश्वर का कितना धन्यवाद करना चाहिए? क्या हम याद करते हैं कि परमेश्वर की कृपाएं प्रति सुबह नई हैं और उसकी विश्वस्तता चूकती नहीं? क्या हम स्वीकार करते हैं कि हमारा अवलंबन उसी पर है, अतः उसके उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं? प्रत्युत हम भी अक्सर भूल जाते हैं कि हर एक अच्छा दान और हर एक सिद्ध दान ऊपर से उतरता है, अर्थात ज्योतियों के पिता से आता है। कितनी बार वे जो स्वस्थ हैं उन अद्भुत करुणाओं को भूल जाते हैं जो उन्हें दिन प्रतिदिन और प्रतिवर्ष प्रदान की जाती हैं। उसकी सारी भलाइयों के लिए वे परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, परंतु जब बीमारी आती है तब परमेश्वर याद किया जाता है। स्वस्थ होने के लिए बड़ी उत्सुकता से प्रार्थना की जाती है और ये है भी उचित। परमेश्वर दुख और सुख में हमारा विपत्ति अर्थात आशा की हुई बुराइयों के सोच सागर में डूबना मूर्खता तथा मसीह के प्रतिकूल है। ऐसा करने में हम आशीषों का आनंद लेने में और वर्तमान अवसरों को सदुपयोग करने में चूक जाते हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम आज के कर्तव्य कर्मों को निभाएं और उसके दुखों को सहें। आज हमें सावधान होना है कि हम वचन में या काम में अपराधी न ठहरें। आज हमें परमेश्वर की बड़ाई और आदर करना चाहिए। जीवित विश्वास के प्रयोग द्वारा आज हम शत्रु को जीत सकते हैं। आज हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए और संकल्प करें कि हम उसकी उपस्थिति के बिना संतुष्ट न रहेंगे। हमें जागते रहना, काम करते रहना और प्रार्थना करते रहना चाहिए, मानो कि यही हमारा अंतिम दिन है जो हमें दिया गया है। तब हमारा जीवन कितना अधिक उत्सुक होगा। हम यीशु का अनुकरण वचन व कर्म द्वारा कितना अधिक करेंगे। छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की रुचि। थोड़े हैं जो उचित रीति से प्रार्थना के बहुमूल्य विशेषाधिकार का सम्मान अथवा अच्छा उपयोग करते हैं। हमको जाकर यीशु से अपनी सारी आवश्यकताओं का वर्णन करना चाहिए। हम अपनी मामूली चिंताओं व व्यग्रताओं की और बड़े बड़े दुखों को उसके पास ला सकते हैं। जो कुछ भी हमको व्याकुल व चिंतित करे उसे हमें प्रभु के सामने प्रार्थना में ले आना चाहिए। जब हम महसूस करते हैं कि पग पग हमें मसीह की उपस्थिति की आवश्यकता है, तो शैतान को अपने प्रलोभनों को घुसेड़ने का अवसर न मिलेगा। उसकी पूर्व नियोजित योजना ये है कि हमें हमारे श्रेष्ठ व अधिकतम सहानुभूति रखने वाले मित्र से दूर रखें। हमको सिवाय मसीह के किसी को विश्वास पात्र न बनाना चाहिए। हम बेखटके उससे अपने हृदय की सारी बातें कह डालें। भाइयों और बहनों, जब प्रार्थना की सभा के लिए एकत्र होते हैं तो निश्चय जानिए कि यीशु आपसे भेंट करेगा, और विश्वास करिए कि यह आपको आशीर्वाद देने को खुश है। अपनी ओर से निगाह हटाकर यीशु को देखिए, उसके बेजोड़ प्यार की चर्चा कीजिए। उसको देखने से आप उसकी छवि में बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो संक्षिप्त कीजिए, मतलब की बात कीजिए। अपनी लंबी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को उपदेश न दीजिए। जैसे भूखा बालक अपने सांसारिक पिता से रोटी मांगता है, उसी प्रकार आप भी जीवन की रोटी मांगिए। परमेश्वर हमको प्रत्येक जरूरी आशीष प्रदान करेगा यदि हम उससे सरलता से और विश्वास से मांगे। आत्मा का सबसे पवित्र अभ्यास प्रार्थना है। उसको खरी, नम्र और उत्साही होना चाहिए। ये नए हृदय की अभिलाषाएं हैं जो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में व्यक्त की जाती हैं। जब प्रार्थी महसूस करता है कि वह ईश्वर की उपस्थिति में है तो स्वयं को भूल जाएगा। वो किसी ऐसी इच्छा को प्रकट न करेगा जिससे मानवीय योग्यता का प्रदर्शन हो। वह मनुष्य के कान को अच्छे भाने वाले शब्दों की चेष्टा न करेगा, परंतु उस आशीष को प्राप्त करने की कोशिश करेगा जिसके लिए आत्मा याचना कर रही है। सार्वजनिक तथा गुप्त उपासना में हमारा विशेषाधिकार है कि हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। हमारे आदर्श के लिए यीशु ने घुटने टेककर प्रार्थना की, लूका 22 आयत 41। उसके शिष्यों के बारे में लिखा है कि वे भी घुटने टेककर प्रार्थना करते थे, प्रेरितों के काम 9 आयत 40, 20 आयत 36। पौलुस ने घोषणा, मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, इफिसियों 3 आयत 14। परमेश्वर के आगे इज़राइलियों के पापों को मानते हुए एजरा ने घुटने टेका। देखो एजरा 9:5। दानियल घुटने टेक कर दिन में 3 बार प्रार्थना करता और अपने परमेश्वर के आगे धन्यवाद करता था। दानियल 6:10।